आगे चलते हैं। अब अगली चीज जो रमजान का दूसरा तोहफा है उसके ऊपर बात होगी, और वो क्या है। अल्लाह ताला ने रमजान के रोजों में एक तो कुरान का तोहफा दिया और दूसरा तोहफा है दुआ का। रोजे की हालत में जिस तरह कुरान अच्छा समझ आता है, इसी तरह रोजे की हालत में दुआ भी दिल से निकलती है, पेट जो खाली होता है। इसलिए फरमाया, व इजा सअलक इबादी अन्नी फ इन्नी करीब, और जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें तो कह दीजिए कि मैं करीब हूँ। कौन कह रहा? अल्लाह ताला। किस से कौन पूछे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई पूछे तो कह दो कि मैं करीब हूँ। क्या करता हूँ? उजीबु दावत दाई, मैं जवाब देता हूँ पुकारने वाले की पुकार का। कब? इजादानी, जब वो मुझे पुकारे। करो क्या अगर चाहते हो कि दुआएं कबूल हों? फल यस्तजीबूली, बस चाहिए कि तुम भी तो मेरी दावत को कबूल करो। वल युमिनू भी, और मुझ पर ईमान लाओ। होगा क्या? लअल्लहुम यरशुदून, ताकि वो हिदायत पाए। नबी सल्लम के पास कुछ लोग आए और उन्होंने सवाल किया, क्या नबी, हमें अल्लाह ताला के बारे में बताइए, वो कौन है? करीब है तो हम उसको आहिस्ता से पुकारे, दूर हैं तो ऊंची आवाज से पुकारे। तो उस पे यह आयत उतरी थी, वइजा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब, उजीबु दावत दाई इज़ा दअनी फलयस्तजीबू ली वलयूमिनू बी। आप कह लीजिए कि इंसानी हकूक की अगर आप बात करते हैं ना, कि इस दुनिया में इंसानी हकूक का अगर एक मंशूर और एक उसका प्रिज्म बनाया जाए ना, तो ये आयत उसकी दलील है। खालिक और मखलूक के बीच में कोई रुकावट नहीं है। दुनिया में लोगों ने बहुत जगह ऐसा करना चाहा कि बीच में खुद बड़े बन गए। मसलन क्रिश्चियनिटी की मिसाल देती हूँ, उनके नज़रिए के मुताबिक किसी से कोई गुनाह हो जाए तो प्रीस्ट के पास आएंगे, फिर पार्डन करेंगे, खरीदेंगे $100 वाली, 200, 500 डॉलर, कितने की पार्डन लेनी है प्रीस्ट साहब से, लेके रो धो के जाएंगे, कहेंगे आज हमारा सिन माफ हो गया। इसी तरह बाकी मजाहब में भी कुछ इसी तरह के नजराने और न्याजें चलती हैं कि फलां फलां पीर के पास आओ, उसका दामन पकड़ो, काला बकरा जिबा करो, पहले उनसे आओ। अल्लाह कहते हैं ये सब खालिक से मखलूक को तोड़ने वाले लोग हैं। तुमने गुनाह किया ना, मेरे पास आओ। देखिए बच्चे से कोई काम गलत हो जाए तो माँ क्या कहती है, मेरे पास आओ, मुझे बताओ, कोई चीज़ टूट गई है ना, आके रो पड़ो, मैं समझ जाऊंगी इससे कुछ नुकसान हो गया। और आपका बच्चा कोई गलत काम हो जाए, आपकी बजाय जाके आपकी दोस्त को बता दे और वो फिर उस पर और से और बातें बनाए, तो आप सोच सकते हैं आपको कितना गुस्सा आएगा। इसी तरह अल्लाह को उस वक़्त बहुत गुस्सा आता है हमारे ऊपर जब कोई गम तकलीफ मुश्किल पड़ती है हम पे, और हम अल्लाह की बजाय किसी जिंदा या मुर्दा के पीछे पले जाते हैं। हम जाके उसे दुआएं कराते हैं, भाई दूसरा आपके लिए दुआ क्यों करे, रब आपका नहीं है? भाई मेरा रब है, मैं खुद मान लूंगी, आपको क्या लगे, ये मेरा रब है, इट्स माई पर्सनल मैटर, आप क्यों बोलते हैं? अल्लाह तो बंदे की इस तरह परते रखता है कि कान पड़ी बात नहीं सुनने देता किसी को। वो आपने वाकया सुना होगा ना, हजरत मूसा के दौर में बारिश नहीं हो रही थी और लोग खुले मैदान में गए कि बारिश की दुआ करें, जाके दुआ मांगी कि अल्लाह ताला बारिश दे दे, तो अल्लाह ताला ने वही के जरिए मूसा के दिल में डाला कि आपकी दुआ तो ठीक है, लेकिन इस महफिल में कोई एक ऐसा गुनाहगार बैठा है जिसकी वजह से किसी की भी नहीं कबूल। नाम फिर भी नहीं बताया। माएँ अपने बच्चों के राज दूसरों को नहीं बताती, खुद मार पीट भी लेंगी दूसरों के सामने बच्चों की सिफत ही बयान करती हैं। हर मूसा ने भी कह दिया कि भाइयों हम में से कोई एक ऐसा है जिसकी गुनाह की वजह से दुआ कबूल नहीं हो रही, ना मूसा ने बताया ना अल्लाह ने बताया। अब जिसने गुनाह किया होता है उसको तो पता होता है ना। अब सूरह क़यामत में पढ़ेंगे, बलिल इंसान वला नफसी ही बसीरा वला वल्का माजीरा, बस उसने अपने ऊपर शर्म की, लानत माना की, कितना बदनसीब हो, मेरी वजह से इतनों की दुआ नहीं कबूल हो रही, वहां बैठे बैठे पता नहीं क्या बातें, थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई, मूसा ने अल्लाह ताला से बात की, अल्लाह ताला अभी तो आपने कहा था बारिश नहीं होगी, कोई एक गुनाहगार बैठा है और अब बारिश भी हो गई। कहा मूसा आपको क्या पता उस बंदे ने यहाँ बैठे बैठे अभी तौबा की, मैंने उसकी तौबा कबूल की। वहीदा साल कई बाद अन्नी फैनी करीब मुजीब दावत दाई इजाद हानी। तो मुझे पुकार के तो देखो, वो कहते हैं ना कि हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, राह रवे मंजिल ही नहीं, हमें रब से मांगने ही नहीं आता। तो याद रखिए कि अल्लाह तक पहुंचने का जरिया ना तो कोई पोप है, ना पादरी है, ना पंडित है, ना पुरोहित है, ना कोई पीर है, ना जिंदा है ना मुर्दा है। जब चाहो अल्लाह से कलाम करो। लोगों के पास जाने का तो वक्त भी होता है ना, प्रोटोकॉल होता है, कितने दरवाजों से गुजर के दरवाजे खुलते हैं। दिन तो दिन रात में जाके देखो, हदीस में आता है रात को लास्माने दुनिया पे आके पुकारता है हल में मुस्तगफिर, कोई है जो बख्शिश तलब करता है मैं उसको बख्शना चाहता हूँ, है कोई बीमार जो बीमारियों से शिफा चाहता है मैं उसको सेहत देना चाहता हूँ, है कोई रिस्क पाने वाला चाहने वाला मैं उसको रिस्क दूं। और इसी बात को अलामा इकबाल ने भी कहा ना, क्यों खालिको मखलूक में हायल रहे बरदे, पीराने कलीसा को कलीसा से उठा दो। कहते हैं ये अल्लाह के बीच में ये जो बड़े बुजुर्ग बन जाते हैं ना, ये अल्लाह के साथ बंदों को तोड़ते हैं। तो अल्लाह कहते हैं एनी टाइम मेरा दरवाजा तुम्हारे लिए खुला है, रात को आओ, दिन को आओ, रमजान में आओ, ईद की रात आओ, तुम पुकार के तो देखो। या लफ्ज उजीब देखिए, इजाबत, किसी की पुकार का सुनना और उसका जवाब देना और उसको कबूल करना, ये तीनों चीजें इसके अंदर आती हैं, सुनना, जवाब देना और कबूल करना। शर्त एक है, फल यस्तजीबू ली, तुम भी तो कबूल करो, मेरा हुक्म मानो, तुम मेरी मानो मैं तुम्हारी मानूंगा, फजकुरूनी अजकुरकुम, पीछे पड़ चुके हैं। वल यूमिनू भी, और मुझ पर ईमान लाए, कैसे, किस चीज का ईमान, कि मैं दुआओं को कबूल करता हूँ, मैं सुनता हूँ। इस पे एक लेक्चर है, दुआ मोमिन का हथियार है, मेरे गुमान के मुताबिक वेबसाइट पे भी है और दावा सीडी में तो वो मौजूद है, सुन के देखें बहुत डिटेल से, किसकी दुआ कबूल होती है, किसकी नहीं होती, किन जगहों पे होती है, क्या औकात हैं दुआ की कबूलियत के, बहुत डिटेल से उस दवा सीडी में मौजूद है, खुद भी सुने, उसकी कॉपियां करवा के दूसरों को बांटे, लेकिन लोगों को उनके रब से जोड़ दें। अल्लाह ताला का बंदे से मामला कंडीशनल है, जैसा तुम मेरे साथ मामला करोगे मैं सब मैं करूंगा। अल्लाह ने बंदे को बराबरी पे रख दिया, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, आगे आप पढ़ेंगे इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, तुम अल्लाह की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी करेगा, और साथ ही साथ कहा लअल्लहुम यरशुदून, ताकि वो भलाई पा लें, सही राह पे आ जाएं। ये है सही तरीका कि रब के बीच में रुकावटें ना खड़ी करो। वो सब का है, जितना एक बुजुर्ग का है उतना आपका भी है, आप अपनी ऊपर लेके देखिए। शौहर और बीवी के बीच में बात होती है ना, तो बीवी शौहर से मांगेगी ना, शौहर दे ना दे मांगेगी तो उसी से ही ना, और अगर वो शौहर की वजह उसके दोस्त से मांगे और साथ ये भी कहते ये देते नहीं है, जरा तुम दे दो खर्चा घर का, फिर देखिए उस रात जो लड़ाई होगी, कहेगा मेरे शरीक से मांगा तूने, मेरी नाक कटा दी। तो जब हम अल्लाह को छोड़ के दूसरों से मांगते हैं तो क्या हम ऐसे शरीके नहीं करते, इसी को शिरक कहते हैं। यही है पार्टनर बनाना, एसोसिएट बनाना, ला तजलु अंदाद अल्लाह, उसके लिए शरीक ना बनाओ।
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ
अब इसके बाद मौजू पूरा हो गया है, लेकिन कुछ अहकामात जिनका ताल्लुक, अब यहां देखिए कितने खूबसूरत तरीके से इबादात मामलात में ढलती हैं। रोजा बंदे की फितरी इबादत थी, अपने लिए थी। अब जाहिर है कि जब घर में रहने वाला एक शख्स रोजे से होगा, हो सकता है दूसरे का ना हो या दोनों का है, तो कुछ ना कुछ इंसानी मामलात में उसकी दखल अंदाजी है। हमारे रोजे का फर्क और किसी को इतना नहीं पड़ता जितना हमारे शौहर को या शौहर की बीवी को पड़ता है। बात वाज़े। वैसे तो माँ बाप भाई बहन सब साथ रहते हैं, लेकिन रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि जिसमें शौहर और बीवी के ख़ास ताल्लुक पे पाबंदी लग जाती है। लिहाजा यहाँ अब शौहर और बीवी के ताल्लुक से रोज़े के नाते से इतनी खूबसूरत बात है कि सिर्फ इसका खुलासा भी समझ गए तो बहुत फ़ायदा होगा। आइए देखते हैं। ओहिल्ल लकुम लैलत सियाम रफसु इला निसाइकुम, हलाल कर दिया गया तुम्हारे लिए रोज़े की रातों में अपनी बीवियों से रगबत करना, ताल्लुक करना, इंटरकोर्स करना, यानी शौहर और बीवी के ताल्लुक के इंतहाई दर्जे की तरफ इशारा है। यहाँ समझ लीजिए अहकाम रोज़ा के मुतालिक ये बहुत तवील आयत। अब इस एक आयत में आपको रोज़े के तकरीबन सारे अहकाम मिल जाएंगे। यहूद के हाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत राइज थी। नोट कर लें छोटे छोटे जुमले। हज़रत मूसा की शरीयत में क्या था कि रोज़ा शाम को ही शुरू हो जाता था और रात भी रोज़े में थी। समझ रहे हैं? मगरिब का वक्त हुआ, कुछ खा सकते हो, खा भी सकते हो, बीवी से ताल्लुक भी कर सकते हो। ज्यों ही ईशा का वक्त शुरू हो गया कह लें, या रात शुरू हुई नंबर एक, और दूसरी सूरत के कोई सो गया, फिर बोल देती हूँ। समझ लीजिए पहले दौर रोज़ा कैसे था कि कुछ वक्त के लिए रोज़ा खुलता था बीच में, मगरिब के बाद खा लो पी लो, ताल्लुक कायम करने कर लो। जूं ही रात का वक्त शुरू हुआ यानी सूरज पूरा डूब गया या सो गया कोई, तो अगले दिन का रोज़ा शुरू हो जाता था, जिसको हमारी जुबान में अठपहरा रोज़ा कहते हैं। ठीक है, ये हुक्म चल रहा था। जो ही रात होती थी तो रात को फिर शौहर बीवी का ताल्लुक भी नहीं होता था, और यहूद के रोज़े में सहरी का कोई तसव्वुर नहीं था। सोते ही रात का रोज़ा शुरू हो गया, अगले दिन तक रहता था। अल्लाह सुबहाना ताला ने इस मसले को रिलैक्स कर दिया। यहाँ से अब आप कह सकते हैं कि मुसलमानों के रोज़े यहूद के रोज़ों की निस्बत हल्के कर दिए। क्या? उहिल्ल लकुम लैलतस सियाम, रोज़े की रातों में तुम्हारा ताल्लुक कायम करना ये जायज़ करार दे दिया, और तुम अपनी बीवियों से कोई ताल्लुक कायम करना चाहो तो कर सकते हो, खा भी सकते हो। क्योंकि उस दौर में जो मुसलमान थे वो ये समझ रहे थे कि हमारे यहाँ भी रोज़े के काम वही हैं जो यहूद के हैं, लिहाजा अब उनको भी शुरू में तो ये लगा कि रात को हमें ऐसा मामला नहीं करना, लेकिन इंसान की ज़रूरत हो सकती है, गर्म इलाकों के लोग थे। नतीजा क्या हुआ कि कुछ सहाबाए कराम जो थे रात को अपनी बीवियों से ताल्लुक कायम करते, और दिल पे गिल्ट था, बोझ कायम हो जाता कि हमने गलत काम किया, हमने गुनाह किया। इसी तरह का एक वाक्या भी कहते हैं, कैस बिन सोरेमा, एक सहाबी का नाम था, सरेमा या सोरेमा, कहते हैं कि किसान थे, खेतों पे सारा दिन काम करते रहे, शाम को वापस आए, बीवी से कहा कुछ खाने को है, कहने लगी घर में तो नहीं है, ले मैं हमसाय से पूछ के आती हूँ। वो बीवी खाने के लिए पूछने गई, पीछे में नकाहत की वजह से इनको ऊंघ आ गई, सो गए। सोने का मतलब क्या था? अगला रोज़ा शुरू हो गया, जाहिर है पूरी रात फिर भूखे रहे। अगले दिन सुबह खेतों पे काम पे चले गए, जब ऐन दोपहर हुई, धूप भी गर्मी भी भूख भी, बेहोश हो गए। अल्लाह ने हुक्म नाजिल कर दिया कि नहीं, अब इतनी सख्ती नहीं, अब रोज़े की रातों में खाओ पियो, ताल्लुक कायम करो, तुम्हें इसमें कोई गुनाह नहीं। क्यों ये रुख्सत है? हुन्न लिबासुल्लकुम व अंतुम लिबासुल्लहुन, क्योंकि तुम उन बीवियों के लिबास हो और बीवियां तुम्हारी लिबास है। सुभान अल्लाह। अब आप देखिए कि अल्लाह ताला ने यहाँ शौहर और बीवी के ताल्लुक के लिए इतनी खूबसूरत बात कह दी कि शायद पूरी पोइट्री इंग्लिश, उर्दू, फ्रेंच, स्पेनिश में इससे खूबसूरत जुमला शौहर बीवी के ताल्लुक के लिए नहीं हो सकता कि तुम अपनी बीवी का लिबास हो और बीवी तुम्हारा लिबास है। किनाया। आप लिख लीजिए कि लिबास और जिस्म, और दूसरे शौहर और बीवी, बीच में लाइन बना लीजिए कॉलम। शौहर और बीवी एक दूसरे का लिबास कैसे हैं? लिबास और जिस्म में कोई पर्दा नहीं होता, इसी तरह शौहर और बीवी में भी कोई पर्दा नहीं होता। फिर दूसरी बात देखिए कि लिबास इंसान की पर्सनैलिटी को खोलता है, यानी जैसी पर्सनैलिटी होती है वैसा लिबास आप चूज़ करते हैं। कुछ लोग बहुत बड़े बड़े फूल डिज़ाइन, बड़े गहरे अजीबो गरीब से रंग चूज़ करते हैं, कुछ बड़े सोबर करते हैं, किसी को प्लेन चीज़ अच्छी लगती है, किसी को बड़ी उलझी हुई लगती है, ड्रेसअप होने से हमें लोगों की पर्सनैलिटी पता चलती है ना, इसी तरह एक लड़की कैसे लड़के को चूज करती है शादी के लिए, इससे उसका अंदर खुलता है। कपड़े चूज करते वक्त हम इतनी देर लगाएं, 10 जोड़े को दे तो पसंद ना आए, रम्मी को ये नहीं लेना वो नहीं, और रिश्ता अपना लव एट फर्स्ट साइट में पसंद कर ले, फेसबुक पे पसंद करें, और वो हमें बस सिर्फ वो जा जाते दिख गए, लव एट फर्स्ट साइट एंड मंगनी एट द अदर साइट एंड तल्लाक एंड अदर साइट, 3 नजरों में ताल्लुक खत्म, शादी भी झट, मंगनी पट ब्याह तट का, ये कहानी नहीं है। अल्लाह कहते हैं जितने क्यूरियस अपने लिबास बनाने में हो, इससे बहुत ज्यादा अपने रिश्ते ढूंढने में हो, ये यंगस्टर्स को समझाया जा रहा है, उन लड़कियों को भी और उन लड़कों को भी जो सिर्फ भंवरों की तरह इधर से उधर चल पड़ते हैं और ऐसी लड़कियों को देखते हैं। आगे कायत आने वाली है, आप बस ये पारा मिस ना करें, फिर देखिए इस कलाम की खूबियां, लेकिन अल्लाह ताला ने यहां बता दिया। फिर आप देखिए कि लिबास जिस्म के साथ होता है, बड़ी उम्र का बंदा छोटा लिबास पहन ले तो बुरा लगेगा, और छोटी उम्र का शख्स बड़ा लिबास पहन ले तो बुरा लगेगा। इसी तरह रिश्तों में कफ, कफ कहते हैं बराबरी, कम से कम यूनिफॉर्मिटी हो, कंवारा है तो कंवारी, शादीशुदा है तो शादीशुदा, इवन जाहिर को भी देखना चाहिए, अगर लड़का बहुत खूबसूरत है देखने में और लोग भी ऐसे हैं मादा प्रस्त, तो फिर लड़की भी ऐसी हो, वरना वो तानों में ही खा जाएंगे, और खूबसूरत लड़की को अगर शौहर जरा दबा हुआ मिल जाता है तो परेशानी। जो हत्तुल मकदूर कोशिश की जा सके जोड़ पे रिश्ते करने चाहिए। फिर इसी तरह आप देखिए कि लिबास के बगैर इंसान कैसा लगता है, अच्छा नहीं लगता ना, इस तरह शादी के बाद शौहर और बीवी जुदा जुदा अच्छे नहीं लगते, ये जो हमारे कल्चर में ना कि वो दुबई के माल कमाने 7 साल बाद आए, ये बेजोड़ रिश्ते हैं, ये तो बीवी ना बेवा कुछ भी नहीं, वो जिंदगियां नहीं होती। शादी के बाद बगैर किसी वजह के शौहर और बीवी को अलग नहीं रहना चाहिए, मैं तो कहती एक रात भी अलग नहीं रहना चाहिए, ये वो रिश्ता है जितना करीब रहते हैं ना उतनी मोहब्बत बढ़ती है, थोड़ी थोड़ी जुदाई हो तो अच्छी लगती है, कभी कभी बीच में कुछ गैप्स आ जाए तो रिश्ता फ्रेश हो जाता है, लेकिन ये जो जुदाई लंबी पड़ जाती है ना महीनों से सालों के सालों पे, 4 महीने से ज्यादा अल्लाह इजाजत नहीं देता मर्दों को बीवी की इजाजत के बगैर दूर रहना, पढ़ेंगे आगे इल्ला के हुक्म में अब इंशाल्लाह ताला। जिंदगी रही तो बाकी बातें आप खुद सोचें, पिछले सालों में तो इस पे मैंने बहुत डिटेल से बात की थी, सुनना चाहें तो बाद में सुन लीजिए, लेकिन यहां बता दिया कि तुम बीवी के साथ रहोगे तो राज ना एक दूसरे के दो। कभी आपके लिबास ने लोगों को बताया कि आपके इस बाजू के अंदर कोई दाग है, कोई कब आपकी कमीज की बाजू ने किसी से बताया? तो शौहर बीवी का कोई राज जानता है, कोई उसके ऐब है जिस्मानी जाती, इसमें इशारा है निजी जिंदगी के राज भी ना शेयर करो, बहुत नापसंदीदा है वो मर्द जो अपनी बीवी के साथ तन्हाई की बातें अपने दोस्तों में करे, और बहुत नापसंदीदा है वो बीवी जो अपनी दोस्त की तारीफें अपने शौहर से करे, इतनी करे कि मर्द के दिल में शौक पैदा हो जाए मैं भी तो देखूं वो कैसी है। नहीं करनी चाहिए गैर औरतों की बातें किसी की भी, चाहे वो दीन वाले हों या दुनिया वाले हों, नेवर डू दिस, इससे आप अपने लिए मुश्किल पैदा करते हैं। फिर अखलाक किरदार सब अच्छा होता है, अल्लाह सुब्हान तआला यही कहते हैं कि मर्द और औरत का ताल्लुक बड़ा खूबसूरत है, अल्लामा इकबाल कहते हैं कि नए पर्दे ना तालीम नई हो के पुरानी, निस्वानियत जन का निगहबान फक्त मर्द है फक्त मर्द, क्या मतलब कि मर्द औरत का मुहाफिज होता है, जैसे लिबास हमारे जिस्म की हिफाजत करता है, मर्द को इसमें एहसास भी दिलाया गया कि तुम एक दूसरे की जरूरत हो। हाँ आलिम अल्लाह अन्नकुम कुंतुम तख्तानून अनफुसकुम, अल्लाह के इल्म है कि तुम खियानते करते हो, इसमें इशारा है कि कुछ सहाबा जो ताल्लुक कायम करते थे और वो जायज़ था, लेकिन वो समझते थे कि नाजायज़ है, तो अल्लाह ताला ने उनकी दिल की गिल्ट को दूर किया कि डोंट वरी इस काम की कोई मतलब कबाहत नहीं, फताबा अलैकुम बस उसने अब तुम पर नजरे रहमत कर दी, वाफा अनकुम पिछली जिंदगी में जो हुआ माफ कर दिया तुमको, अब क्या करो फल आन बाशिरू हुन्ना, अब उनके साथ शौहर बीवी का ताल्लुक कायम कर लो, यानी इफ यू वांट टू डू इट कब, रमजान की रातों में, वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम और ढूंढो जो उसने तुम्हारे लिए लिखा, वो क्या है, दो तो चीजें, प्लेयर और औलाद, शौहर बीवी के ताल्लुक के बीच में जो बुनियाद है वो क्या है कि अगर मर्द की एक बेसिक नीड है तो गैर औरत से ना मांगो अपनी बीवी से मांगो, हदीस में आता है कि मेराज के सफर में आपको जहन्नुम में कुछ मनाजिर दिखाए गए जहन्नुम के, कि कुछ लोग हैं औरतें और मर्द, और वहां हंडिया में गंदा खाना पक रहा है, और जबरदस्ती फरिश्ते उनको वो खाना खिला रहे हैं, और गरीब खुशबू वाला खाना है उसकी तरफ नहीं जाने देते। जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि ये कौन लोग हैं, तो कहा कि ये वो हैं कि जिनके घरों में हलाल बीवियां थीं और उनको छोड़ के बाहर हराम से ख्वाहिशात पूरी करते थे। आज अल्लाह भी इनको पाक चीज से दूर कर रहे हैं, और इसका वाइस वर्सा। तो एक तो है प्लेयर, अल्लाह ने भी जिम्मेदार, देखिए भूख लगती है तो खाने को दिल चाहता है, प्यास लगती है तो पाने को दिल चाहता है, इसी तरह बलूगत के साथ एक और तलब बढ़ती है, फितरी सी तलब है, इसके अंदर बहुत हाहू ही भी नहीं करना चाहिए ना इस पे बहुत बात करनी चाहिए, एक फितरी बात है। तो मर्द के लिए बीवी की सूरत में अल्लाह ने वो प्लेयर रख दिया, इसको भी इबादत करार दिया, वो जब आएंगी आयतें आगे हम पढ़ेंगे तो बात करेंगे। और साथ ही साथ माँ कतब अल्लाहु लकुम में औलाद है, कि शोहर बीवी का ताल्लुक सिर्फ सेक्स का ताल्लुक नहीं है, सिर्फ एक ये ऑब्जेक्ट नहीं है प्लेयर का, बल्कि इसके नतीजे में औलाद तलब करो, अपनी औरतों को भांज ना करो और बच्चे पैदा करो, और उससे फिर तुम अपने लिए सदका जारिया लाओ। आगे हम पढ़ेंगे ली तस्कुनू इलैहा का लफ्ज़ सूरत रोम में आता है, तो गोया कि बीवी शोहर को सुकून देती है हर तरह के लिहाज से। अल्लाह के नबी सफर में भी अपनी बीवियों को साथ रखते थे, क्योंकि बाज़ दफ़ा सफर में जंगों में इतने बड़े बड़े मुश्किल फैसले होते हैं कि मर्द डिप्रेस हो जाते हैं, तो बीवी जो होती है बंदे को रिलैक्स करती है, उसका गुस्सा ठंडा करती है, उसके अंदर कोई कमी होती है उसको पूरा करती है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इसको करो, वह कुलू व शरबू, और अब खाओ और पियो, हत्ता यतबैन लकुम अलखैत अलअबयद मिन अलखैत अलअस्वद मिन अलफज्र, यहां तक के वाजे हो जाए तुम्हारे लिए फजर की सफेद धारी रात की स्याह धारी से। पहली बात क्या कही, के शौहर बीवी का ताल्लुक रात में जायज है, अब दूसरी के खाओ और पियो, कब तक खाओ, फजर की स्याह धारी सफेद धारी से अलग हो जाए। ये कौन सा वक्त होता है, बिल्कुल वो वक्त जिस वक्त तक हम लोग खाते हैं। एक होती है सुबह सादिक सच्ची सुबह, और एक होती है सुबह काजिब। आपको होता है कि जब सुबह होने वाली होती है ना, एकदम एक हल्की सी सफेदी आती है आसमान पे, लगता है सुबह होगी लेकिन फिर वो चली जाती है, ये वक्त होता है जिस वक्त तक हम खा पी सकते हैं, खा लें पी लें, ताल्लुक कायम किया है, गुसल ले लें कर लें करा लें व्हाटएवर, उसके बाद एवरीथिंग इज फिनिश नाउ, फिर उसके बाद नमाज, और उसके बाद रोजा रखना होगा, और कब तक रखो, सुम अतिमुस्याम इलल्लैल, फिर रात तक रोजे को पूरा करो, अब नहीं इनमें से कुछ होगा। यानी इसमें एक्सेप्शंस दे दी कि रात में जायज है खाना पीना, दिन में नहीं खाना, अब नहीं खा सकते, यहां पर ये हुक्म पूरा हो गया, बात वाज़े, रात के लिए आसानियां कर दी गई। यहां आखिरी हुक्म इन आयतों के नाते से रमजान का, वला तुबाशिरू हुन्ना, और ना मुबाशरत करो अपनी बीवियों से। मुबाशरा का लफ्ज आपने अभी सुना लफ्ज़ी वज़ाहत में, जिस्म का जिस्म से मिलना, कि नाया है शोहर बीवी के ताल्लुक का। यहां देखिए कि कुरान जरूरतन बात तो करता है लेकिन वल्गर लफ्ज नहीं इस्तेमाल करता, यहां से पता चलता है कि छिछोरी बातें, शोहर बीवी की बातें, छेड़खानी, चाहे वो फिल्मों में हो, ड्रामों में हो, दोस्तों की महफिल में हो, दुल्हन को कोई सताए, बातें करे, ये इंतहाई नापसंदीदा है। अच्छे मुहज्जब लोगों का, अच्छी दोस्तों का ये मिजाज नहीं होता कि वो अकेले में बैठ के अपनी दोस्तों से उनकी शादी की बातें करें। इसलिए तुबाशिरू ना, बस मिल लो उनसे, अब ना करो, कब, अंतम आकिफ होना फिल मसाजिद, जहाँ एतिकाफ के मसाइल है। नबी सल्लम रमज़ान की आखिरी 10 रातों में एतिकाफ करते थे, बल्कि 20 रातों का भी आपने किया हुआ है। इन रातों में ताक रात आती है जिसमें कुरान का नजूल हुआ था, ये अहकामात सारे इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे किताबो सौम में। एक नई चीज़ जो मैंने इस साल अभी रिसेंटली सीखी, पहले कभी नहीं सीखी थी और किया भी नहीं, अमल का मौका नहीं मिला, तो ये जो 10 ज़िलहज हैं, 10 दिन गुजरे हैं पीछे, इनके अंदर भी कोई इतिकाफ करना चाहे तो कर सकते हैं, वैसे तो इतिकाफ कभी भी कर सकते हैं, इस दफ़ा छोटा सा करने का मुझे भी मौका मिला। अरब में ये आम कल्चर है कि लोग फिर इन दिनों में रातों को भी करते हैं, दिन को करते हैं, जैसे हज का दिन है मस्जिद में चले जाए, तो मुझे बहुत ही शौक आ रहा था तो मैंने औरों को भी देखा, तो फिर असर से जाके मगरिब तक, या जैसे 9 ज़िलहज जिस दिन हज का दिन है वो मस्जिद में गुजारे, एक नफली इबादत है, इसको बांध नहीं सकते कि इस वक्त से इस तक, लेकिन ये कि इतिकाफ का मतलब क्या होता है, कि अल्लाह की इबादत के लिए जम जाना, उसमें फिर दुनियावी काम कोई नहीं होते, डिटेल जिसकी सारी इंशाल्लाह आप किताबों से हमें सुनेंगे। तो कहा उसमें भी शर्त है कि आम रोजे की रातों में जायज़ है बीवी के पास जाना, लेकिन एतकाफ की हालत में शौहर या बीवी है तो फिर नहीं जा सकते, ये इशारा इसमें, तिल का हुदूदुल्लाह फला तकरबूहा। कितना प्यारा कमेंट है पूरी बात के ऊपर. ये अल्लाह की हदें हैं, दीज आर दी बाउंड्रीज फ्रॉम अल्लाह, वला तकरबुहा. इसको सीरियस लो, नॉन सीरियस एटीट्यूड ना इख्तियार करो. ये अल्लाह की हदें हैं, इसके आगे ना जाओ. अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए कायम कर दी. कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु आयातिही लिन्नास, इसी तरह अल्लाह बयान करता है अपनी निशानियां लोगों के लिए, लअल्लहुम यत्तकून, ताकि वो बच जाएं. दूसरी बार वही बात है. गौर करें रुकू की पहली आयत, रोजे क्यों रखो, कुतिबा अलैकुम अस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, वहां ब्रैकेट थी तकवा की. एंड पे फिर सब कुछ करके कहा कि लअल्लहुम यत्तकून, तो गोया के रोजे का लुबे लुबाब तकवा. अपने आप को बचो और तकवा की तारीफ सुन लें, कभी फिर लिख लीजिएगा, हिफ्ज़ुन नफ्सिन अम्मा योसिम, नफ्स की हिफाजत करना हर उस चीज से जो नफ्स को गुनाहगार कर दे. आंखों का तकवा क्या, आंखों को हर उस चीज से दूर कीजिए जो आंखों को गुनाहगार कर दे. इसी तरह कानों, जुबान, दिल, पांव, हाथों का तकवा के गुनाह में मुलव्वस करने वाले कामों से अपने आप को रोक लो, तो गोया के आप इंशाल्लाह ताला फायदा पाओगे. अब आप देखिए यहां तक क्या अहकाम आते रोजे के, बात खत्म हो गई ना. अगली आयत कितनी अजीब आ रही है, आखिरी आयत है सबक की, वला ताकुलु अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, और तुम अपने माल आपस में बातिल तरीकों से हड़प ना किया करो. वतुदलू बिहा इलल हुक्कामी, और इनको हुक्काम तक पहुंचाने का जरिया ना बनाओ. क्यों, लिताकुलु फरीकम मिन अमवालिन्नास बिल इस्मी, ताकि लोगों के माल का कुछ हिस्सा हड़प कर सको, खा सको गुनाह के साथ. वन तुम तालमून, और तुम इसको जानते बूझते हो. रमजान में क्या बताया, हलाल से रुको, दो दफा बात कर दी तकवा की, आखिरी आयत में बता दिया कि रोजा हमको क्या सिखाता है, कि लोगों के माल बातिल तरीके से ना खाओ. रमजान हमें क्या सबक देता है, कि एक महीना अल्लाह के हुक्म से हलाल से रुकते हो तो 11 महीने हराम से रुको. यहाँ रिश्वत की तरफ इशारा है. ये जो हुक्काम को पैसा दिया जाता है, तुदलू दल्ला दलू, डोल डालने को कहते हैं. पानी में जब डोल डालते हैं ना, तो एकदम पानी थोड़ा ऊंचा होने लगता है, लेकिन उसमें फिर पानी डाल के निकालते हैं तो कम होता है. इसी तरह रिश्वत उस माल को कहते हैं जो थोड़ी सी पेश की जाए, ताकि उसके जरिए बहुत सारा फायदा दिया जाए. इस हदीस में आता है, राशि वाल मुर्तशी कुला हुमा फिन्नार, रिश्वत लेने और देने वाला दोनों जहन्नमी है. तो गोया के इधर इशारतन बात बता दी कि रोजे रखने के बाद अगर तुम्हारी जिंदगी से रिश्वतें, हराम का माल, लोगों की बातें, माल खाना नहीं रुका, तो समझो कि तुमने रोजे की असल को नहीं पाया. क्या तरीके होते हैं लोगों के माल को बातिल से खाने के, आसान सी इसकी तारीफ लिख लें, कि जो माल दूसरा आपको नहीं खिलाना चाहता, देना नहीं चाहता, उसकी मर्जी के खिलाफ धों से, धांधली से, किसी न किसी तरीके से उसका माल खा लिया जाए. आमतौर पे तो हम इसमें वो लंबी लिस्ट लिख सकते हैं, मैंने पता नहीं शायद 10-15 चीज़ें लिखाई थी सबीलुल, उसमें मुझे लगता है कि रब का पैगाम वाली में शायद लंबी लिस्ट बनी थी इसके ऊपर हमारी. लेकिन सबको पता है चोरी, सूद, डाका, ये सब कुछ चीज़ें बातिल तरीके में आती है ना, ऐसी कमाई का जरिया कि जिसमें दूसरों की हक तलफी हो, लॉटरी और बाकी चीज़ें आप लोग खुद भी सोच के बता सकते हैं. लेकिन आप देखिए कि कई दफ़ा अपनी ज़िंदगी में, हम निजी ज़िंदगी में, लोगों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उनका माल खा जाते हैं, कभी रस्मों के नाम पे. जब कोई मर जाता है, किसका दिल चाहता है कि आपको भारी दावतें खिलाए, तीजे के नाम पे, 40वें के नाम पे, यतीमों का माल नहीं खाया जाता. इस्लाम नहीं चाहता कि हम दूसरों का माल खाएं और उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करें. कल इस पे थोड़ी सी बात कर दी तो कर देंगे, लेकिन इसमें हर नाजायज़ ज़रिया आमदन आ जाता है. ख़यानत, धोखा, गबन, फ्रॉड, जुआ, गैम्बलिंग जिसको कह लें, सूद, तिजारत की वो किस्में, सौदे, लेने देने, बहुत लंबी डिटेल्स है. अल्लाह ताला हम सबको इस सबसे महफूज करें. ख़ास तौर पे दीन के मामलात में तो इंसान को बहुत ही फिक्र लग जाती है, तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हम सबको सही मानों में सेंस के साथ रोजे रखने वाला बना दे. अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे. आप लोग अपने कमेंट्स लिखिए जो भी आपकी फीलिंग्स हैं इस वक्त, और अल्लाह ताला हम सब की इस सारी छोटी सी कोशिश को कबूल फरमाए. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.